समय 45 मिनट का है, विषय तो मेरा करीब 3 मिनट का है, लेकिन मैं उसको 45 मिनट में संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि धवला में श्री अगर प्रकरण है और बहुत गंभीर प्रकरण है। मंगल और मंगलाचरण की बात इसमें है। ऐसा लिखा है व्रत रविशंकर की टीका के अंतर्गत, और ये धवला में भी गाथा एक आई है कि 6 बातों का निरूपण पहले करना चाहिए वक्ता को, आचार्य को ही लिखा होगा। कौन सी 6 बातें? मंगल निमित्त, मंगल माने मंगलाचरण से ग्रंथ आरंभ करना चाहिए। मंगलाचरण के बिना जो ग्रंथ आरंभ करते हैं वे मूल परंपरा से हट जाते हैं। मंगलाचरण बिना शुरू नहीं होती। कोई भी तर्क दे सकते हैं, मुझे मालूम नहीं, ये जो जिनवाणी का कार्य है वो मंगल ही मानी, लेकिन ये अपवाद मार्ग तो हो सकता है, ये सामान्य मार्ग नहीं हो सकता, मूल मार्ग नहीं हो सकता। मूल मार्ग में जितने ग्रंथ आदि की रचना हुई है या उनके प्रवचन होते हैं वो तो मंगलाचरण पूर्वक ही होते हैं, पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि एक ग्रंथ किसके निमित्त से लिखा गया है, किस हेतु से लिखा गया है, प्रयोजन क्या है और इसका परिमाण क्या है, ये भी बताना इसलिए जरूरी होता है कि हम आपको बताए बिना, जैसे मैंने कहा 45 मिनट चलेगा और हम शुरू कर दें और 1 घंटा हो जाए और अभी बंद ना करें तो फिर आप दूसरे दिन से आओगे तक नहीं। ऐसे में इनके परिमाण भी बताना पड़ता है, ग्रंथ कितना बड़ा ग्रंथ है। 1000 पृष्ठ वाला ग्रंथ नाम सुन के कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, तो थोड़े इसीलिए छोटे ग्रंथ का चलन हुआ। तो परिमाण भी बताना चाहिए, ग्रंथ का नाम भी बताना चाहिए, ग्रंथ का कर्ता भी बताना चाहिए। इन 6 अधिकारों का परिचय करा के आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करे, ये धवला में लिखा है। कहां से बता रहा हूँ? धवला में से। अब थोड़ा मंगलाचरण उन्होंने प्रारंभ किया, मंगलाचरण कौन सा मंगलाचरण किया? रमो वरिहंतान, रमो सिद्धानम, रमो वैनियाणम, रमो वज्रायाणम, रमो लोहे शब्द साहुण, ये मंगलाचरण धवला में लिखा है। ये मंगलाचरण भी 2 प्रकार के लिखे धवला के अंतर्गत, एक निबद्ध मंगलाचरण होता है, एक अनिबद्ध मंगलाचरण होता है। निबद्ध मंगलाचरण जो ग्रंथ का कर्ता आचार्य होते हैं उनके द्वारा मंगलाचरण पूर्वक ही ग्रंथ की शुरुआत होती है, वो निबद्ध मंगलाचरण कहलाता है। अनिबद्ध मंगलाचरण ऐसा है कि कोई अपना ग्रंथ लिख रहा है और उसमें मंगलाचरण कर रहा है, उसने स्वयं कोई मंगलाचरण निर्माण नहीं किया है, तो दूसरे किसी भी ग्रंथ का, किसी भी आचार्य का अथवा अन्य कोई भी मंगलाचरण के रूप में वहाँ मंगलाचरण दिया जाएगा, पर वो निबद्ध मंगलाचरण नहीं कहलाएगा, वो अनिबद्ध मंगलाचरण कहलाएगा। तो आगे इन्होंने ये लिखा है कि ये अहोकार मंत्र निबद्ध मंगलाचरण है। उससे हमें ये पता लग गया कि सबसे पहले अहोकार मंत्र का प्रयोग किसने किया, तो ये पुष्पदंत भूपाली आचार्य ने इसका पहली बार प्रयोग किया है, और ये उन्होंने उनके द्वारा लिखा गया मंगलाचरण, सही ना कि नहीं? अब आप देखिए आगे लिखते हैं कि ये मंगल शब्द का अगर आप जानना है तो 2 तरीके से जान लिख लो। बिल्कुल सामान्य 2 तरीके तो ये हैं कि एक तो धातु जो है उसका विश्लेषण करें, तो 2 तरीके से विश्लेषण करते हैं, मम और गल, ऐसा करते हैं। मम माने पाप, गल माने गला, तो मंगल कहलाता है, और मम माने आनंद और ला माने लाभ, तो उसको आनंद कहते हैं, आनंद को लाने को उसको मंगल कहते हैं। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया, आप यहाँ व्याकरण क्यों पढ़ाने लगे? मम धातु से यानी कल्याण के अर्थ में अलच प्रत्यय लगाकर जो शब्द तैयार किया जाता है नियमानुसार व्याकरण के, वो मंगल कहलाता है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया, यहाँ तो प्रकरण चल रहा है कर्णादि होता, यहाँ व्याकरण की क्या जरूरत है? जवाब सुनिए जरा, आचार्य क्या जवाब देते हैं। जवाब में उन्होंने ये बात लिखी कि धातु से जो अपरिचित व्यक्ति होते हैं उनको विवक्षित शब्द का अर्थ जान पाना कठिन। क्या लिखा? विवक्षित शब्द का अर्थ बोध होता नहीं। जैसे उदाहरण बताते हैं आपके लिए, दर्शन शब्द है, दर्शन शब्द है ना, क्या अर्थ दर्शन?
बोलो दर्शन का अर्थ क्या है? एक जब दर्शनों की उपयोग का प्रकरण चलेगा तो दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन। नेत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय का विषय चलेगा तो दर्शन का अर्थ है जो रूपी दिखाई देगा वर्ण, वो अर्थ निकलेगा। और जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण होगा और वहाँ दर्शन सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ अर्थ निकलेगा कि प्रतीति। क्या अर्थ निकलेगा? तो देखो ये कैसे अंतर कैसे आ गया। तो एक तो उसकी मूल उत्पत्ति काल में आ गए और वो मूल उत्पत्ति को किस प्रसंग में प्रयोग किया गया है तो अर्थ ही निकल आता और नहीं तो अर्थ कारण भी निकल जाता है। इन्होंने लिखा, मैं देर अर्थ संक्षेप का बताता चल रहा हूँ। फिर इनके भेद किए तो भेद इसके नाम मंगल, स्थापना मंगल, तुम्हारे से द्रव मंगल, भाव मंगल, ऐसे भेद करके अलग अलग इनके नाम दिए। जिसमें मुझे एक प्रकरण लेना है, नाम मंगल वाला प्रकरण मुझे बताना है आप लोगों को, जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत। और उस नाम मंगल में इन्होंने आठ प्रकार के मंगलों की चर्चा की। कौन से आठ मंगल यार सुनिए, आपने सुने तो नहीं होंगे मुझे पक्का विश्वास है, सुना हो तो अच्छी बात है। नाम मंगल के आठ प्रकार है। पहला सुन लो जरा, नाम मंगल पहला, एक जीव नाम मंगल। क्या? एक जीव नाम मंगल में उदाहरण दिया है, जैसे साक्षात जिनेन्द्र भगवान का समोषण हो, किन भगवान का समोषण है तो उनका नाम तो होगा ना, महावीर का समोषण, विंध्याचल पर्वत पर समोषण आया तो किसका आया? महावीर। आपने भगवान महावीर का स्मरण किया, ये कौन सा मंगल हो गया? एक जीव नाम मंगल। कौन सा मंगल? एक जीव नाम मंगल। अब दूसरा सुनिए जरा, फिर दूसरा उसमें लिया है अनेक जीव नाम मंगल। क्या है दूसरा? अनेक जीव नाम मंगल। अनेक जीव नाम मंगल क्या है? तो कहे जहाँ पर मुनियों का संग विराजमान हो और हम उन सब मुनि संघ को स्मरण करें तो वो कहलाएगा अनेक जीव नाम मंगल। जैसे अकंपनाचार्य का संघ है, 700 मुनिराज हैं और हमने उनको सबको पूरे एक अकंपनाचार्य के नाम से सबको स्मरण किया तो कौन सा मंगल होगा? अनेक जीव नाम मंगल। दो गए ना, आठ बनाना है। तीसरा देखिए, एक अजीव नाम मंगल। कौन सा मंगल? एक अजीव नाम मंगल। ये अजीव नाम मंगल क्या है? जिनेन्द्र भगवान साक्षात तो नहीं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की जो प्रतिमा है वो नाम मंगल, अजीव नाम मंगल में आती। अब किसी मंदिर या वेदी में एक ही प्रतिमा हो, अथवा बाहुबली जी की, गोमतेश्वर की प्रतिमा है, वो वहाँ पर उस जगह का एक विद्यमान है, तो कौन सा मंगल कहलाएगा? एक अजीव नाम मंगल। समझा? उनका हमने स्मरण किया भगवान बाहुबली का, और जैसा स्मरण किया मैंने साक्षात का स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन आश्रय किसका लिया? अजीव नाम का, अजीव नाम मंगल। एक अजीव नाम मंगल। फिर चौथा लिखा है अनेक अजीव नाम मंगल। ये अनेक अजीव नाम मंगल क्या है? एक ही वेदी में भिन्न भिन्न तीर्थंकरों की अनेक प्रतिमाएं विराजमान है, उन सबको हमने उनमें खास करके 10-5 का नाम ले लिया। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 प्रतिमाएं मैं विराजमान, उनके नाम भी लिखे और अपन ने उन सबका नाम स्मरण किया और बाकी इत्यादि करके सबको भाव रूप में नमस्कार किया तो कहलाता अनेक अजीव नाम मंगल। यानी जीव माने आत्मा, जो साक्षात आत्मा है वीतरागी सर्वत्र, उसका नाम लेने में भी मंगल होता है, उसकी प्रतिमा का भी नाम लेने में, प्रतिमा के आश्रय से भी नाम लेने में मंगल होता है। ये जो बातें हैं जरा देखिए जरा। पांचवा लिखा है इन्होंने एक जीव और एक अजीव नाम मंगल। यानी एक साक्षात जैसे समर्षण हो तो जिनेन्द्र भगवान को मूल साक्षात एक प्रतिमा जिनेन्द्र की कहलाएगी, यानी साक्षात जिनेन्द्र कहलाएंगे, और उनकी उस रचना में अन्य भी जिन प्रतिमाएं हो सकती हैं प्रतिमाएं, तो एक एक प्रतिमा हो अगर और एक साक्षात जिनेन्द्र हो तो कौन सा मंगल कहलाएगा? एक जीव नाम और एक अजीव नाम मंगल। ऐसा दिया। और छठवां दिया हुआ है मैं तो संक्षेप कहकर मुंह पे आ रहा हूँ, जो विषय है जो भेद ज्ञान का विषय है, मुझे मालूम आज भेद ज्ञान का प्रकरण चलाना है। हमके डॉक्टर साहब ने एक घंटा चलाया है, हम 45 मिनट चलाएंगे भेद ज्ञान वाला, और उसमें भेद ज्ञान की चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, भेद ज्ञान की चर्चा भेद के लिए नहीं की जाएगी, काय के लिए की जाएगी, अभेद पे आने के लिए की जाएगी। इसलिए मंगल, हम भेद ज्ञान को मंगलकारी कहेंगे तो वो व्यवहार जानना, अभेद ज्ञान मंगलकारी कहेंगे तो निश्चय जानना। एक बार चलेगी फिर उधर सब बातें आने वाली है। अब वो ऐसा है ना कि जब प्लेयर सबरे खेलेंगे तो अपनी अपनी स्टाइल में तो खेलेंगे, स्टाइल कैसे बदल सकती है किसी की, अपनी अपनी निजी स्टाइल होती है। देखो यहाँ भी चल रहा है छठवां मंगल लिया, अनेक जीव और अनेक अजीव नाम मंगल, जहाँ पर मुनिराज अनेक विद्वान है और वहीं पर जिन मंदिर में प्रतिमाएं भी अनेक विद्वान है, तो वो अनेक जीव नाम और अनेक अजीव नाम मंगल कहने में आएगा। सातवां लिया इन्होंने एक जीव अनेक अजीव नाम मंगल, मैं एक साक्षात जिनेन्द्र हूँ अथवा मुनिराज हूँ और बाकी अनेक जिन प्रतिमाएं हूँ, तो वो क्या हुआ, एक जीव और अनेक अजीव नाम मंगल। और आठवां और आखिरी ये लिखा है अनेक जीव और अनेक अजीव नाम मंगल, जहाँ मुनिराज अनेक हैं और जिन प्रतिमाएं भी अनेक हैं, तो अनेक अजीव, अनेक अनेक जीव नाम और अनेक अजीव नाम मंगल, ऐसे आठ वेद मंगलों के किए गए। और मंगल के विषय में बेहद विस्तार से लिखा है, इतना लंबा लिखा है कि 50 पेज से ज्यादा है। लेकिन ये तो हमने शुरुआत की इसकी, मंगल में दो प्रकार के मंगल और होते, एक तदाकार मंगल जिसको सद्भावना मंगल कहते, एक अतदाकार मंगल जिसको असद्भावना मंगल कहते। तदाकार में जो मूर्ति होती है वो ज्यों की त्यों होना चाहिए, मैं जैसी साक्षात पुरुषाकार मूर्ति होती है वैसी ही बिल्कुल वीतरागी और शांत मुद्रा वाली जो मूर्ति है वो तदाकार मंगल कहना। और अतदाकार की दुनिया में स्थापना चलती है, मगर यहाँ जिन धर्म के अंदर अतदाकार की स्थापना नहीं हुआ करती, यहाँ तो केवल तदाकार स्थापना मान है, अतदाकार स्थापना मान नहीं है। लेकिन लोक में अतदाकार स्थापना मान है, शतरंज की बोटे होती है, उनके नाम है, राजा भी नाम है, मंत्री भी नाम है, और उसके प्यादे भी हैं, उसके साथ में घोड़ा भी है, हाथी भी है, ऊंट भी है, ये सब उनके आकार के हैं जो नाम ले रहे हो, विभिन्न आकार के हैं और उनको नाम तुम ये दे रहे हो, ये कौन सा स्थापना हुई, अतदाकार स्थापना कहलाती। तो ऐसी स्थापना आदि के भेद से अलग है, एक लोकोत्तर मंगल होता है, एक लौकिक मंगल होता है। लौकिक मंगल भी हमारे लोग बहुत मानते हैं, अरे जो घर में जैसे मंगल कलश आप स्थापना करते हो, वाकई में देखा जाए वो लौकिक मंगल है। और मगर मंगल कलश खाली नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पूर्ण भरा होना चाहिए। इसके ऊपर से इस ग्रंथ में 8-9 गाथाएं प्राकृत की लिखी और उन मंगलों का परिचय कराया। अब मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ, तो मैंने सामान्य बात की है, मुझे जो विषय लेना भेद ज्ञान से संबंधित मंगल का, इसमें एक प्रकरण आया है कष्ट मंगलम, मंगल किसका होता है, तो जवाब दिया जीवस्व मंगलम। क्या जवाब दिया, जीव का मंगल होता है, मानी जीव मंगलकारी है। किसका जीव मंगलकारी है, अपना जीव मंगलकारी है, अरहंत सिद्ध का जीव भी मंगलकारी है, लेकिन भाषा बदल गई, जब हमारी दृष्टि पड़ कर गई तो वो मंगलकारी को कहलाएंगे मंगल व्यवहार से, शर्माया। और मेरा आत्मा मंगलकारी है और द्रव्य से, द्रव्य स्वभाव से, निश्चय से, निश्चय से आत्मा मंगलकारी है, व्यवहार से पंच परमेश की मंगलकारी है, ठीक है ना। तो ये कष्ट मंगलम किसका मंगल, तो जवाब दिया इन्होंने कि जीवस्य मंगलम, जीव का मंगल होता। अब जीव का मंगल बताने को दो नए का प्रयोग किया, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायवाची। द्रव्यार्थिक नए से मंगल कहेंगे जीव स्वभाव वाला जो त्रिकाली आत्मा है, वो तो द्रव्यार्थिक नए से मंगल है, और पर्यायवाची नए से मंगल वो कहलाएगा। का जो बीत रात और केवल ज्ञान परिणित हुआ है वो जो दशा है वो मंगलवाणी। क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन में एक बात आई थी कि भगवान आत्मा अपनी ज्ञान परिणति में विराम करता है, अथवा यो कहिए कि ज्ञान परिणति के आधार से रहता है, परिणति है आधार, और वो भगवान आत्मा कौन है ये बात कही थी ना। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं तो पर्याय से तो जो निर्मलता प्रकृति है वो मंगलकारी, और वो मंगल में ही आनंद की साक्षात अनुभूति होती है। आत्मा अनादि से मंगल स्वरूप कारणों का है, लेकिन जब तक कारण का आलम्बन लेके कार्य प्रकट नहीं होगा तो मंगल की अनुभूति होने वाली
नहीं।
निबोध में लेकर के अभी तक आत्मा मौजूद है मिथ्या दृष्टि का, लेकिन कभी मंगल हुआ उसकी पर्याय में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कारण को जाने बिना कारिणी सिद्धि
नहीं
होती। तो मंगल कारण को जीव है, कौन है कारण? जीव है। और उस जीव का जब यह उपयोग आश्रय लेगा तो परिणति में जो निर्मलता प्रगटेगी, परिणति में जो निरापणता प्रगटेगी वो कैसी होगी? मंगलमय होगी। और सुनिए उसमें भी अंतर है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का मंगल और पंचम गुण स्थान वर्ती का मंगल छठे सातवें आगे आगे गुण स्थान वालों के मंगल में सर कमता पाई जाती है, क्वालिटी में नहीं। क्वालिटी एक ही होती है लेकिन प्रमाण में कमता पाई जाती है, आगे आगे मंगल का प्रमाण बढ़ता चला जाता है। जाति एक रहेगी, सम्य दृष्टि का मंगल का अनुभव जिस जाति का है, अरहंत सिद्ध भगवान का मंगल का अनुभव भी उसी जाति का है, लेकिन परिमाण एक सा नहीं, परिमाण में अंतर है। और हमें भी कितने परिमाण में आनंद चाहिए, अपूर्ण तो पूर्ण, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए। तो जब पूर्ण आनंद चाहिए है तो पूर्ण आनंद का कारण भी कौन है? अरे आनंद की शुरुआत का कारण भी आत्मा है, आनंद की वृद्धि का कारण भी आत्मा है, और आनंद की पूर्णता का कारण भी। तो नजर कहाँ जाए तो भेद जाने कह रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए? आत्मा को जाना चाहिए। लेकिन हम जब आप बोल रहे वेद ज्ञान करने को शुरुआत से करो, और हमारे आचार्य अमित चंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए में नए चक्र की चलाने की कला बताई है। जो नए चक्र की कला नहीं जानते हैं वे वास्तव में मंगल करने में समर्थ
नहीं
है, इसलिए। और मंगल वास्तव में तभी हो सकता है कि जब वो उसकी कला जानने लगे तो वो मंगल होता है। ठीक है, देखिए कहाँ से मैंने कहा था कि वो जो मंगल जो होता है वो तो मंगल करने की कला माने अनुभव की कला, वो अनुभव की कला है, भेद ज्ञान की भी कला उसी को बोलते हैं। जब द्वैत खड़ा रहता है तब तक उसका नाम भेद ज्ञान पड़ता है, जब द्वैत मिट करके बाहर पदार्थ जिसको स्व पर कहा है वहाँ पर बोध हो जाता है और एक आत्मा में एकाकार अनुभूति होती है, वो निश्चय मंगल कहलाता है, परमार्थ मंगल कहलाता है। वहीं से मंगल की शुरुआत होती है और उसी दशा में मंगल की वृद्धि होती है और उसी दशा में मंगल की पूर्णता होती है। सही मैं ना, किसको मंगल कहा? एक आत्मा ही मंगल का इन्होंने कहा, इसलिए अगर आत्मा को मंगल कहा है तो अब हमें नजर कहाँ ले जाना पड़ेगी, जाएगी कैसे आत्मा पर नजर, ये मैं बताना चाहता। राम जी ने एक पद लिखा है, जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी दार अंतर भेदिया, जिन्होंने परम पैनी बुद्धि रूपी छेनी अंतर में डाल करके भेद कर दिया। भेद कर दिया माने भेद था, उस भेद को जान लिया, उसका नाम भेद कर दिया, भेद दिया। अब भेद किस किस में था तो यहाँ से शुरू करो भाई। देश हमारा है ये कहलाता है विश्व उच्चरित असद्भूत व्यवहार में, जो देश का राज नहीं छोड़ सकता वो अपने धन का राज नहीं छोड़ सकता, जो अपने धन का राज नहीं छोड़ सकता वो अपने स्त्री पुत्रादि का राज नहीं छोड़ सकता, जो स्त्री पुत्रादि का राज नहीं छोड़ सकता वो वास्तव में अपनी पर्याय में होने वाले भिखारी भावों का राग नहीं छोड़ सकता, और जो भिखारी भावों का राग नहीं छोड़ सकता वो अपनी निर्मल पर्याय की निर्मलता का राग नहीं छोड़ सकता, और अपनी पूर्ण निर्मल दशा से दृष्टि घोल करके अपने आत्मा के लाभ है ये भी उससे नहीं हो पाएगा। इसलिए कुल भेदों से भी दृष्टि हटा रहे ये भी नहीं हो सकेगा। इसलिए पहला नियम है परीक्षा में अनेक क्वेश्चन आते हैं, एक एक शब्द में आंसर देने वाले, मतलब क्या करता है परीक्षार्थी, पहले जो अच्छी तरह से आ रहे हैं उनका आंसर पहले लिख देता ताकि टाइम बर्बाद ना हो, समझा। फिर क्या करता है, फिर जो कठिन कठिन आते हैं उनको क्रम से सॉल्व करता है और वो अपना पेपर पूरा सॉल्व कर लेता। यहाँ भी ये आचार्य कह रहे हैं कि तुमको पहले देश का राग छूटा है कि नहीं, मिश्र वस्तुओं का राग छूटा है कि नहीं, अगर उनका राग नहीं छूटा है, स्त्री पुत्रादि का राग नहीं छूटा है और तुम जिनेंद्र भगवान के राग को छोड़ने की बात करते हो, ये आगम रोधक प्रवचन है, इससे आगम का अपराध होगा। तुम स्त्री पुत्रादि के राग में तो मंग रहते हो और दीप रास्ता के राग को राग कह करके हे बताते हो, तो पहले तो तुम्हें हे किसको मानना है, क्या ख्याल है, स्त्री पुत्रादि का राग पहले हे है तब वो तो छूटता ही नहीं, ये भी अच्छी बात है वो छूटता नहीं और ये तुमने पकड़ा ही नहीं है तो छूटा ही है, और वो ही तुमको उपदेश मिल गया कि एक तो सब राग हे है पर अशुभ पहले हे है कि शुभ पहले हे है, विचार करना दृष्टि में तो दोनों एक साथ है ना कि नहीं, पर दृष्टि तो जाने दो आचरण करोगे तो मालूम आपको आत्मानुभूति की प्राप्ति स्वोपयोग छोड़ करके तो होती है, अस्वोपयोग छोड़ के किसी को आत्मानुभूति नहीं होती, क्या कह रहे समझना जरा ये चीजें, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना वस्तु से ज्यों का त्यों सामने रखना, तो मैं बिल्कुल ज्यों का त्यों रख रहा हूँ, समझना है ना, और आपको ख्याल में लेना है ये बात को जरूर, देखिए जहाँ जितना वजन लेना उतना ही लेना है, मेरे को अच्छी तरह मालूम इसकी देवलाली में मैंने जो उस तुम्हारे से अनंत धर्मनाश तत्वों वाला पद है उसका अनुवाद उसका मैंने विश्लेषण किया था, पहले कभी पंच कल्याणक हुआ था पहला उसमें उसमें एक बात ध्यान दिलाई तो उनका ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, उसमें वेदज्ञान कराया और वेदज्ञान कराते कराते कहा परतत्व के भावों से भिन्न, क्या लिखा है वहां परतत्व के भावों से भिन्न और परतत्व के निमित्त से होने वाले जो विकारी भाव हैं उनसे कथनचित भिन्न, क्या शब्द डाला उनको लिखा सर्वथा भिन्न और इनको उसके विकारी भावों को लिखा कथनचित भिन्न, और मेरे पास कथनचित कह के क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं अज्ञान दशा में विकारी भावों का कर्ता वो आत्मा ही है कर्म नहीं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसका फल किसको मिलेगा, आत्म का फल जीव को मिलेगा ना, तो अगर वो कर्म किया होता पुंगल में और जीव को फल मिले तो वो अन्याय हो जाता, और जीव को फल मिला इससे हमने जाना कि अपराध किसका था, जीव का, तो जीव अपने अपराध को अपना अपराध स्वीकार करे कि ना करे, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे तो आप आचार्य अमृतचंद से आगे नहीं बढ़ गए, मुझे भी याद आती है अमृतचंद आचार्य का वो कलश तीसरा जिसमें उन्होंने लिखा पर परिणति हेतु मोह नाम अनुभावा, पर परिणति का हेतु माने निमित्त मोह नाम कर्म का उदय, मोह नामक कर्म का उदय, फिर उसका अनुभव करके मेरी परिणति कलमाशित हो गई, क्या कहा मेरी परिणति में कलुषता आ चुकी है, अनादि से उस मोह का मैंने अनुभव किया, परिणति में कलमाशितपना आ गया है, कि किसने स्वीकार किया कि मेरी परिणति में कलमशपना है या मलिनपना है, अमरचंद आचार्य ने स्वीकार किया कि मेरी परिणति मलिन थी, फिर कहा मेरी इस समय सार की व्याख्या करके अपनी परिणति को विशुद्ध करूंगा, वैसे मैं तो समय सार जो हूँ वो विशुद्ध ही हूँ, मुझे शुद्ध नहीं होना है, अब देखो शुद्ध हूँ शुद्ध नहीं होना ये भी ले लिया, और मेरी परिणति मरण है, मैं समय सार की व्याख्या करके अपनी परिणति को निर्मल करना चाहता हूँ ये भी कह दिया, अब जरा विचार कीजिए तो वहां जब परिणति को निर्मल करने की बात थी तो कैसे परिणति निर्मल होगी? उनके जिनेन्द्र भगवान के या भेद ज्ञान के गीत गाने से परिणति निर्मल होगी कि भेद ज्ञान के विकल्प को छोड़कर निश्चय आने पर ही परिणति निर्मल होगी? कैसे होगी निर्मल? तो समझदार की व्याख्या करते करते निर्मल होगी कि समझदार की व्याख्या का विकल्प छोड़ के समझदार में आ जाएंगे तो निर्मल होगी। तो परिणति निर्मल करने का ये तरीका है। और जितना भी तत्पर ज्ञान की चर्चा चल रही है, चलेगी और चलती रही है, वो परिणति निर्मल करने के लिए ही चलती है, अन्य कोई प्रयोजन
नहीं है।
क्या तो हमें ये अवलोकन भी करना बार बार कि जो हम आराधना कर रहे हैं, भेद ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, इस भेद ज्ञान की आराधना में कुछ परिणति में विशुद्धि आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो कहीं भूल चल रही है, और यदि आ रही है तो ठीक मार्ग पर चल रहे हो, बढ़ते जाओ। इसलिए किसके मंगल होता है? आत्मा कारण को जाने तो कार्य की सिद्धि होती है। कारणानुविधायिनी कार्यानि, कारण का अनुसरण करके कार्य होता है। पंडित चोड़ामण जी ने मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण किया ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो उसमें मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान, ये मंगलमय मंगल करण को गीत राग विज्ञान कहा, गीत राग विज्ञान को मंगलमय मंगल का करने वाला कहा। तो ये गीत राग विज्ञान किसने का विषय? नमोताई किसने का विषय है? गीत राग विज्ञान ये द्रव्यार्पण का विषय है। किसने का विषय है? ये द्रव्यार्पण का विषय है। ये जीव का स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव है। वीतरागता भी जीव का त्रिकाली स्वभाव है, और ज्ञान भी जीव का त्रिकाली स्वभाव है, और ऐसा जीव है। और जीव का ही स्वभाव अगर मंगलमय ना हो तो उसके आश्रय से परिणति में मंगल कहां से प्रकटे? इसलिए उन्होंने क्या कहा, जीव जीव से स्वभाव मंगल, जीव का स्वभाव ही मंगलकारी। अब आगे का प्रश्न उठाया शिष्य ने, अगर जीव का स्वभाव मंगलकारी है तो सर्वजीव मंगलकारी है तो कुछ जीव का स्वभाव मंगलकारी है? तो लिखा सब जीवों का स्वभाव मंगलकारी। तो शिष्य ने पर प्रश्न किया, तब तो फिर मिथ्या दृष्टि भी मंगलकारी से तो हो जाएगा। क्या क्या प्रश्न उठाया? मिथ्या दृष्टि जीव है कि नहीं है? और कैसा जीव है मिथ्या दृष्टि? सिद्ध समान। कैसा जीव है? सिद्ध समान। वो बोलिए मिथ्या दृष्टि जीव मंगलकारी है कि नहीं? तो आचार्य क्या लिखते हैं? हाँ, मिथ्या दृष्टि मंगलकारी है, परंतु परंतु मंगलकारी तो है, परंतु उस मिथ्या दृष्टि का मिथ्या को अज्ञान कसाय वो मंगलकारी नहीं है, उसका ज्ञान मंगल स्वरूप।
क्या कहो?
ज्ञान को मंगल बना सिद्ध कर रहे हैं, वो राज्य उसका मंगल बना सिद्ध नहीं कर रहे हैं। और अगर हमारी परिणति में मोह राज्य स्वतः रहा है और ज्ञान और वेद ज्ञान और आत्मानुभूति नहीं बच रही है तो तुम्हारे मंगल है ही नहीं। तुम कितने ही कुछ बोलो उसको कुछ बोले आने वाला नहीं। बोलने के अनुसार वस्तु का परिणाम नहीं होता है, वस्तु जैसी परिणाम रही है वैसी स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान कहता है। इसलिए यहाँ क्या कहा कि किसको मंगल जो होता है किसके लिए होता है? तो कहा जीव का मंगल होता है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन उठाया कि कस्य मंगलम, तो कहा जीवस्य मंगलम। पहले तो कौन मंगलकारी है? तो जीव मंगलकारी। फिर किसका मंगल कहलाता है? कहा जीव का मंगल कहलाता है। फिर एक शब्द और प्रश्न किया, केन मंगलम, किसके द्वारा मंगल होता है? इसमें तो गजब प्रश्न का आंसर दिया, बोध कादि भावई मंगलम।
क्या लिखा?
अब इसमें तुम्हें दो एक चीज तो जम जाएगी, उपसम भाव मंगलकारी है, छोसम भाव मंगलकारी है, दर्शन बोल के उपसम से होने वाला उपसम भाव, उसके क्षय उपसम से होने वाला छोसम भाव, और उसके क्षय से होने वाला छायिक भाव कैसा है और मंगलकारी है कि नहीं पर्याय निकलने से है? अब शिष्य ने प्रश्न उठाया कि आपने बोल तो दिया कि औदक भाव मंगलकारी कैसे है? ये सिद्ध करो, सुनो जरा, ख्याल में आई होगी कई बात, फिर ये औदय भाव मंगलकारी कैसे है बताए? हम रोज
पंच परमेश की विनय करते करते कि नहीं करते, गुरुदेव की विनय करते, अहो उपकार निवर्ण कुंदनो गंड बेनो जिन कुंद मणि आप्या ते श्री गुरु। ये जो आप बोल रहे हो ये मंगल कर रहे हो क्या मंगल कर रहे हो, बोलो बोलो हैं? व्यवहार मंगल कर रहे हैं। कौन सा मंगल? व्यवहार मंगल। क्यों? क्योंकि व्यवहार में मंगल वो कहलाता है जिनके स्मरण करने से कसाय मंद पड़े और पुण्य भाव हो गए उसको व्यवहार में मंगल मंगल कहते हैं, और जिसके स्मरण से पुण्य पाप दोनों नष्ट हो गए उसको निश्चय मंगल कहते हैं। समझ आया? इन ओलेक भाव भी व्यवहार से मंगल है क्योंकि परिणामों में विशुद्धि लाता है, विशुद्धि जिससे भी प्रकट है उसको मंगलकारी बोला जाता है। अरे और तो ठीक, आप तो इतना मंगल करते हो, दुकान चलानी है तो दुकान खोलने के पहले ताले को नमस्कार कर लेते हो, कोई कोई पार्टियां को नमस्कार कर लेते हैं, फिर कोई अगरबत्ती जलाते हो, कोई भी देवी देवता की फोटो जो लगी हो पैसा देने वाले की उसको जरा ऐसा अगरबत्ती कर देते हैं। इतनी गहराई के विख्यात में तो डूबे हो, राज से भिन्न का अनुभव तुमको नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं तुम्हें अगर राज से भिन्नता का अनुभव करना है तो ये मोटा मिथ्यात्व तो छोड़ो, जिसके मोटे ही मिथ्यात्व नहीं छूटा है ऐसी आपने देखा चाहू जो जो धान में उसको पेलते हैं तो उसका मोटा छिलका पहले निकलता है, फिर उसको जब पॉलिश करना होता है तो थोड़ा टाइट करके उसको पॉलिश करते हैं और पूरा छिलका जो लाल छिलका है वो निकल जाता है। सरमन अब जिसका मोटा छिलका ना निकला हो उसका लाल छिलका निकल सकता है? नहीं। जिनके स्थूल भूले ना निकली हो उनके सूक्ष्म भूल निकल सकती है कि नहीं, बोलो। इसलिए स्थूल भूल पहले करना चाहिए। देव साथ गुरु की भूल जब तक रहेगी तत्व की भूल तब तक जा सकती नहीं है, और तब तक राग से भिन्न आत्मा भेद का भेदगान हो सकता नहीं है, और सच्चा भेदगान हो बिना आत्मानुभूति हो सकती
नहीं।
इसलिए और एक भाव से मंगल होता है। अब और प्रश्न किया कौन मंगल, वो होता कहाँ है मंगल? तो लिखा है जीवे मंगल कहाँ उत्पन्न होता है, मंगल की पर्याय पैदा कहाँ होती है? जीव की पर्याय है ना, वो तो जीव की जीव में पैदा होती है, जीव की पर्याय है जीव में पैदा होती है वहाँ मंगल होता है। और आपको मालूम वो मंगल पर्याय में कौन आने बैठा है, कौन स्थित है, कौन आधार वो तो हो गई आधार, आधे कौन है उस मंगल पर्याय? आत्मा। कौन है आधे? मंगल पर्याय जितनी निर्मल प्रकृति है उसका भी आधे वो भी आधार है, किसका? आत्मा का आधार। और परिपूर्ण मंगल पर्याय बदल जाएगी तब भी आधार बनेगी वो मंगल पर्याय, और आधे कौन बनेगा? आत्मा आधे बनेगी। इसलिए जीव में मंगल होता है ये कहकर के भले ऐसा कहा सप्तमी के व्यक्ति का प्रयोग किया, लेकिन अभेद में भी सप्तमी का प्रयोग होता है, अभेद में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष की डाल, अब बताओ वृक्ष की डाल वृक्ष से भिन्न है कि अभिन्न है? अभेद है कि भेद है? अभेद, लेकिन वृक्ष की डाल कहलाती आत्मा का सुख, तो ये षष्ठी का प्रयोग है। लेकिन षष्ठी के प्रयोग में कोई सुख न्यारा है और आत्मा न्यारा है ऐसा भेद नहीं, सही माया नहीं। इसलिए कहां मंगल होगा? तो जीव में मंगल होगा। अब आप देख रहे हैं इस सब क्वेश्चन में तुम्हें नजर कहाँ ले चली, और जहाँ ले जानी वहां नजर अगर चली गई और सबसे नजर हट गई तो विज्ञान हो जाएगा और अवैध अनुभूति हो जाएगी। कितने काल मंगल रहता है? ये चरम मंगल कितने काल तक मंगल चलता है? तो कहते हैं इसमें विभिन्न अपेक्षा है। एक जीव का द्रव्यात्मिक स्वभाव से देखा जाए तो अनादि अनंत मंगल होता, उसी जीव का पर्यायात्मक की अपेक्षा देखा जाए तो सारी शांत और सारी अनंत मंगल होता है, सही मायने। और इस तरह से ये जीव की अपेक्षा द्रव्य अपेक्षा और पर्याय अपेक्षा लेते हैं तो ये मंगल के भेद उसमें पड़ते हैं। फिर इसमें आखिरी बात आ रही है, इस तरह से जो मंगल पना आपने कहा वो तो मेरे समझ में आया,
अब ये ऐसा आगे प्रश्न उठाते हैं कि ये मंगल के प्रकार कितने, तो कहा दो प्रकार है, सामान्य अपेक्षा मंगल एक ही प्रकार का है और विशेष की अपेक्षा इसके दो भेद है, मुख्य और अमुख। ये मुख्य मंगल वे हैं जैसे शुद्धात्मा की अनुभूति वो मुख्य मंगल है और बाहर में जो हम मंगल आचरण करते हैं, पंचपरमेश्वर का नाम स्मरण करते हैं वो व्यवहार मंगल है और लौकिक मंगल में जो भी तुम चावल आदि से करते हो, सफेद या पीली सरसों का उपयोग करते हो और भी जो घड़ा विराजमान करते हो, घड़े की बोली लगाते हो, तो लगा तो नहीं लगाते, घड़े की बोली का इसलिए लगा रहे, घड़ा मंगलकारी है इसलिए लगा रहे हो, क्या मंगलकारी है इसलिए लगा रहे हो। अभी लोगों को वाकई में विचार नहीं, क्रिया कांड में जब वो मस्त होता है तो उसको ये विवेक ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। अभी ऐसे भी कलश चल रहे हैं भैया कि जिसमें एक बूंद पानी ठहरे ही नहीं, वो कलश ही नहीं है जिसमें एक बूंद पानी नहीं ठहरे। अरे एक बूंद तो जाने दो, कलश क्रेक हो और उसमें एक एक बूंद पानी ठहरता हो तो मंगलकारी है ही, मंगल का प्रतीक ही नहीं। मंगल का प्रतीक तो वो है जिसमें पानी ठहरे और भरा हो, अधूरा भी ना हो, जल से भरा हुआ होता है उसको व्यवहार में मंगल बोला जाता है। परमार्थ मंगल तो अलग चीजें हैं, ये व्यवहार में भी मंगल का ज्ञान नहीं है, परमार्थ मंगल कैसे हो गए। हालांकि व्यवहार से परमार्थ नहीं होता ये बात पक्की है, लेकिन जिनको व्यवहार का ज्ञान नहीं हो उन्हें परमार्थ का ज्ञान नहीं होता ये बात भी बिल्कुल पक्की है। क्या कह रहे हैं समझ लेना, मैं बहुत सावधानी से हर चीज को रिपीट कर दे कि एक हम छूट ना जाए तो हम तैयारी बैठे हो पकड़ने के लिए, देखो हम सब आंसुओं का भी खुलासा करते चलते। और आप एक बार फिर सुन लेना कि फिर अगर क्वेश्चन आवे कोई तो पूछ ले, हम सुनकर परेशान हैं। आगे चलते यहाँ एक प्रश्न आया कि कितने प्रकार का मंगल होता है, तो सामान्य अपेक्षा एक होता, विशेष अपेक्षा लोग तो निश्चय मंगल और व्यवहार मंगल होता है और दर्शन ज्ञान चार्य की अपेक्षा लो तो मंगल तीन प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन मंगल, सम्यक ज्ञान मंगल, सम्यक चार्य मंगल और चत्तारी मंगल, हम तो सब जानते ही हैं और पंच परमेश्वरी भी मंगल होते हैं। समझना, ऐसा भेद करते करते दस बारह प्रकार के भेद समझा दिए उन्होंने, इस तरह से आने जान लें, भेद करो तो भेद होके चले जाएंगे और अवेद में लोग तो एक आत्मा के सिवाय वास्तव में तो निश्चय से कोई दूसरा मंगलकारी नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, अगर अथवा जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो ऐसा जो कहते हैं, इसमें भी मंगल शब्द गर्भित है। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र के जाति मंदिर में रोज पहले सच पूछो, एक मुमुक्षु का कर्तव्य तो ये है कि पहले उठ करके नहा धो करके चाय याद नहीं आना चाहिए, आ जाए तो भी भुलाना चाहिए, अर्जन पहले जिनेन्द्र का दर्शन होना चाहिए, उस दर्शन से तुम्हारी कषाय मंद होगी अर्जन में और उस मंद कषाय से तुम्हारे में पात्रता आएगी कि आगे हम जो देवाणी सुनेंगे वो हम समझ सकेंगे। तो मंगलकारी पहले किया जाता है फिर दुनिया के कार्य बाद में होते, तो खाना पीना नाश्ता पानी दुनिया के कार्य हैं और जिनेन्द्र के दर्शन करना, पूजन करना, भक्ति करना, स्तुति बोलना, इसके जितना समय हो उतना नियम नहीं है किसी के लिए, मगर इतना नियम है कि उनकी मुख्यता है और लौकिक कार्यों की गौरता। सौ काम छोड़ के पहले कहां जाओ, एक एक चीज की महिमा हजार हजार गुणी बता करके बता रहे, सौ सौ गुणी बढ़ा के बता रहे, इसलिए महिमा को पहचानना और जहाँ पहुँचना है वो लक्ष्य को चूकने है वो लक्ष्य ध्यान रखना, लेकिन उस लक्ष्य को ध्यान रखने के लिए एक ही तरीका है कि उसको बिल्कुल आदि से अंत तक पूरा समझना और पूरे मार्ग को समझ लेना, और अगर शुरुआत में मार्ग गलत रख लोगे तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। ये सारी मर्यादाएं हैं, इस धवल में भी इतना आया, मैं तो सोचता था कि इसको कम से कम ज्यादा अगर हम दो प्रवचन लेते तो दोनों का डिटेल बताते और बहुत गजब डिटेल उसके अंतर्गत आया। मैं चूंकि विषय अलग है, मंगल कब करना चाहिए तो तीन बार मंगल को अवश्य करना चाहिए, ये इसमें लिखा है, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। और टोलेमाई की ऐसे हैं, उन्होंने मध्य मंगल में हर अध्याय का मंगल चरण किया, आदि मंगल में मंगल मन मंगल करण, ये आदि मंगल, दूसरी दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठवा अध्याय, सातवा अध्याय और नौवा अध्याय, आठवा छोड़ दिया है क्योंकि आठवां अध्याय है ही नहीं, सातवें अध्याय का अंश है वो, इसलिए अलग से मंगलाचरण नहीं किया है। और फिर और सातवें तक के मंगलाचरण मध्य मंगलाचरण और अंतिम मंगलाचरण जो है वो आखिरी नौवें अध्याय का, शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल है विघन विनाशक शुभ कारण नमो शुद्ध शिव को, ये आखिरी मंगलाचरण उसमें आया। ये मंगलाचरण करने का प्रयोजन क्या है? ये मंगलाचरण का प्रयोजन ये है, आदि मंगलाचरण तो तुम्हारे कोई भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए होता है, मध्य मंगलाचरण तुमने जिन ग्रंथ को विस्तार किया है समझ रहे हो उस विद्या को प्राप्ति कराने का निर्विघ्न उपाय बनाता है, और अंत मंगलाचरण में उसके फल की प्राप्ति होगी, इसलिए तीन मंगलाचरण करने को कहा है आचार्यों। अब ये सारी चीजें व्यवहार की है, व्यवहार की, लेकिन जब व्यवहार की सारी दुनिया की बातें याद रखते हो तो ये व्यवहार की भी बातें ख्याल में रहना चाहिए, कदाचित भूल जाओ तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन निग्लेक्ट ही करते हो तो फिर राजमार्ग से वंचित हो जाओ, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको यथाशक्ति जितना बने उतना करना चाहिए, इसलिए आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। आदि मंगलाचरण से शिष्य को सरलता पूर्वक प्रारंभ किए गए ग्रंथ के अध्ययन आदि में पारंगतता प्राप्त होती है, और अंत में प्रारंभ किए गए कार्य की विक्षिप्ति नहीं होती है। मध्य मंगलाचरण वास्तव में देखा जाए तो उस विद्या की प्राप्ति में कहना चाहिए सहयोगी होता है, और अंत मंगलाचरण विद्या की प्राप्ति का विद्या का फल प्राप्त कराता है। इस तरह मंगलाचरण किया और वो मंगलाचरण का प्रकरण तो जाने दे, एक बात टोलेमाई से पूछी मंगल के विषय में, किसी वो ये पूछी थी कि ये मंगल करने से वाकई में मंगल होता है कि नहीं होता है, जवाब अजब बात है, परिणाम तुमने निर्मल किए हैं, बीज तुमने बोया और वो बीज अंकुरित होता है कि नहीं, ऋषि शंका पूर्वक बीज बोलोगे, अरे जो बोलोगे वो उगेगा, तो तुमने परिणामों में विशुद्धि की है उसका फल आएगा। तो टोलेमाई से कोई ने कहा आपने मंगलाचरण करके ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक चालू किया था और पूरा नहीं कर पाए, क्या कारण? तो कह सुनो उसका कारण दूसरा है, मंगल करना उसका कारण नहीं, पूर्व का ऐसा तीव्र पाप आया तो पूरा संक्रमित नहीं हो सका, पूरा अपरिषित नहीं हो सका, इसलिए उसके फल में तो कार्य दिन में आया है, लेकिन जो मैंने वर्तमान मंगलाचरण किया है उसके परिणामों की विशुद्धि से तो वो जो और तीव्र आवश्यकता था वो बहुत घट गया है, और ये जो वर्तमान मंगलाचरण का फल है वो तो मिलता ही है, लेकिन पूर्व का उदय तीव्र हो तो उसमें बाधा आ जाती। और दृष्टांत दे दिया, जैसे कोई ने बहुत ऋण लिया, अब वर्तमान में रोज ऋण चुकाता है और ऋण से वो ऋण नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में कमा करके ऋण चुकाना तो ऋण चुकने का ही कारण है। कैसे इन मंगल प्रकरण को याद रखकर वेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा तक आना है, और ज्ञायक आत्मा ही वास्तव में अनादि अनंत मंगल है, उसके आश्रय से ही पर्याय में मंगल होता है, उनका उनके आश्रय से जिनने पर्याय में मंगल किया है उनकी शरण लेने से भी व्यवहार मंगल होता है, इसके पूरी मंगल की परंपरा का वेद ज्ञान करके अंतिम मंगल जिसमें न तो विनय करने की भावना है, न बंध है, न बंधक भाव है, एक बंध बंधक भाव का अभाव होकर के एकाकार एक रस होकर आत्मानुभूति होती है, वहाँ वेद ज्ञान की सिद्धि होती है, वहाँ अभेद आत्मा का अनुभव होता है, और मंगल करने का यही प्रयोजन है। यही बात इस जिनागम में आई है, इसी प्रयोजन से मैंने चर्चा की है, और मैं अब यहाँ इसे विराम देता हूँ।
नाची तो गंगायत्री चरागमानी अनिचेन धारानिच वर्मनी कहानी चामे अनिमेन साध्यान्य
तैयारी पंत की पानी शादी को गंगा की चलानी सुगंध जहाँ तरंग उठानी संत कराय ज्ञानी शादी को गंगा गीत राजमानी जाके अब ब्राह्मण के कुछ प्राणी आग चंद्र जय घट माहिया प्रमाणी शादी को निज धर्म की कहानी के ज्ञान से तुझे हो पालो भगवानी मत करो स्वामी तुम दो